Ram, 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 Ram. Parākṛṣṇa-madbandham param brahma-dadāsu-sī-saṁdarya-sahāsya-sarva-svam vande-gandhātu-dhammah प्रपन्न पारिजाताय थोत्रवेत्ते गोपानने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्ठात् ൂർണീന്ദുസുന്ദരമുഖാധരവിന്ദനേത്രാ കൃഷ്ണാത്മരം കിമപി തത്വമഹം ന ജാനേ ഹരി ഓം നമോസ്തു പരമാത്മനേ നമസ്തി ഗോവിന്ദോ നമോ നമസ്തി നാരായണ 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 കൃഷ്ണനാമന കൃഷ്ണ ये नाम ही शुद्ध है, कृष्ण कृष्ण ये नहीं। देखो शुद्ध तो कृष्ण ही है, परंतु भगत का भाव हो तो कृष्ण कुछ भी कहो नाम, वो भगवान भाव पहचान लेते हैं। बच्चा है माँ माँ कहता है, उस माँ के नाम कोई मदर कहे, कोई माँ कहे, कोई या कहे, कोई माई कहे, कोई आई कहे, तो माँ समझ लेती है। ये तो माँ के नाम है ही, इसके सिवाय माँ को कोई बाई कहते हैं, कोई माँ को भाभी कहते हैं, तो भी माँ समझ लेती है। भाभी कहने वाले को माँ देवर नहीं समझती, बेटा ही समझती है। बाई कहने वाले को भी वो भाई नहीं समझती, बेटा ही समझती है। ऐसे आप भगवान का कोई नाम लो, भगवान अपना ही समझ भावग्रहिराधन भावग्रहण करते हैं। और नामक तो क्या है, कुत्ता है, उसको मारने को दौड़ो तो भागने को जगह नहीं हो, लाठी जगह मार रहा है, परंतु कुत्ते को मालूम जगह मार पड़ती है, भागने को जगह नहीं तो पहले चिल्लाने लगता है, तो जोर से राठी जैसे न चिल्लाने से मारता था इतनी जोर से नहीं मार सकेगा। इसका अर्थ हुआ कुत्ता है वो एक रक्षक की पुकार करता है, तो रक्षक भगवान कहते हैं मेरा ही नाम है, तो भगवान का नाम होता है वो, तो वो उसके हृदय में ऐसी हो जाती है कुत्ता जोर से नहीं मार सकेगा। तो भगवान के तो भाव है चीज, कोई मेरी रक्षा करो, यही बात गजेंद्र ने कही, यह कष्ट नहीं, कोई एक ईश्वर है उसके मैं शरण हूं। तो भगवान ने कोई रूप उसने चतुर्भुजी द्विभुजी श्याम ऐसा नहीं किया है, कोई एक ईश्वर इसने भगवान ने सुन दिया है। तो भगवान तो उसने नियत को भाव को देखते भीतर के असली उधर भाव है, और कोई शंका नहीं है, अनन्य भाव है, अनन्य अन्य भाव नहीं है, तो भगवान सुन लेते हैं। वो कहते अपने कर्तव्य कर्म में मनुष्य स्वतंत्र है प्रतंत्र, प्रतंत्र बिल्कुल नहीं, कर्तव्य कर्म प्रतंत्र है तो स्वतंत्र हुआ ही किसमें, अपने कर्तव्य कर्म के पालन करने में जीव कभी पराधीन नहीं है, सदा स्वाधीन है। कहते भगवान की सब पर दया है तो जीव इतने कटते क्यों है, इतने जीव मारे क्यों जाते हैं, आप मारे जाते हैं मरते क्यों, क्यों नहीं कहते इतने जीव क्यों मरते हैं, ये मरना जीना है नहीं, उनके कर्मों के अनुसार है। दूसरा जो मारने वाले अन्याय करते हैं अत्याचार करते हैं उनको दंड भोगना पड़ेगा, भगवान दखल नहीं देते, भले आदमी भी दखल नहीं देते हैं, समझा देते हैं, कह देते हैं, तो शासन नहीं करते। शासन राज करता है और शासन करते हैं डाकू, चोर, बदमाश, खराब आदमी होते भी करते हैं, और जबरदस्ती नहीं करते भले आदमी किसी पर ही। तो भलों के ही सरदार है भगवान, तो जबरदस्ती नहीं करते। पूछा कि 33 करोड़ मंत्र आपके लिए क्या एक ही मंत्र का जाप, मैं कहूँ एक ही मंत्र का जप करना चाहिए, या याद आओ जब जो जब ऐसा नहीं। कहते स्त्रियों के लिए कौन में शिवाय का जाप उचित है, तो बहन माता उत्तर कह रहे तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय न सारे ये भी दी है। फिर तो बात पहली गई वो ये जो भाव आ जाए तो किस तरह से जपो वो भगवान सुन लेते हैं, मान लेते हैं। नारायण 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 हम बोलो क्या सुनोगे। आज सुबह सुनाया था, कल भी सुनाया था, तो कई कई बातें हैं लोगों को अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो वो एक बात कहता हूं मैं से। सांसारिक विषयों का जो भोग है वो खास पतन करने वाला है, उसमें महत्व वस्तुओं का और क्रियाओं का होता है, क्रियाजन्य भोग है, तो वस्तु और क्रियाओं के उपयोग से सुख होता है, संबंध से उसको भोग कहते हैं, और वो संबंध के छूटने से जो आनंद होता है उसको योग कहते हैं। जहां संबंध है वहां भोग है, संबंध रहित है वहां योग है। वो संबंध से जो भोग भोगे जाते हैं उसमें अंतःकरण जितना अधिक पिघलता है, अधिक तल्लीन होता है, उतने ही उस भोगों के संस्कार पड़ते हैं। इसमें एक बात है जो लोगों को अच्छी लगी, पहले जो सुख भोग चुके हैं उनकी जो याद आती है, वो याद आती है तब उसमें इतना मन तल्लीन हो जाता है जो मानो प्रत्यक्ष में ही है ऐसा मालूम होता है, मन पर इंद्रियों पर ऐसा असर पड़ता है। असर नहीं, अंतःकरण अशुद्ध वैसे ही होता है जैसा समक्ष सामने भोग भोगने से अंतःकरण मैला होता है, वैसे मानसिक भोग भोगने से भी अंतःकरण मैला होता है। एक और बात है कि चौड़े भोगने में तो मनुष्य के संकोच भी हो सकता है, दूसरों से शर्म भी आ सकती है, और बाधा भी दूसरों से आ सकती है, स्थान भी एकांत नहीं मिलता है, परंतु मानसिक भोग भोगने में कोई बाधा नहीं है, ना कोई मनुष्य की बाधा है, ना स्थान की बाधा है, ना कोई और किसी की बाधा है, वो तो स्वतंत्र है चाहे जितना ही भोग है, और दोष उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष भोग भोगने से होता है। मानसिक सुख लेता है भोगों के संग से, पहले भोगे हुए बातों को याद करके सुख लेता है, तो उसका अंतःकरण मैला वैसा ही होता है नहीं, उन भोगों में स्वतंत्रता रहती है, तो मानसिक भोगों में एक अंतःकरण मैला ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, वो उसमें तल्लीनता भी कम नहीं होती है, उसमें रस भी कम नहीं आता है, मन से सुख भी कम नहीं होता है, तो वो बड़ा भयंकर है। अब एक बात बतावे, ध्यान दें आप, संसार को असत मानना और संसार से आसक्ति रहित होना, इन दोनों में आसक्ति रहने होना ही ठीक है। भोगों का अभाव हो चाहे भोगों का भाव हो, आसक्ति न होने पर कल्याण होता है, उस आसक्ति रहने पर भोग चाहे मिले चाहे न मिले पतन बरोबर ही होता है। एक विशेष बात गीता ने कही है कि आसक्ति रहते हुए भोगों के याद करने से जो पतन होता है वैसा आसक्ति रहित भोगों के भोगने से भी नहीं होता। तो आसक्ति है वही बंधन कारक है और उसी का ही निषेध भगवान ने किया है। आसक्ति क्या, आसक्ति सत्समवाय से भी बनता है और सजी संगे से भी बनता है। अर्थ क्या हुआ, मन से उस विषयों का संग एकता भोगों से, भोग क्या जो अनित्य वस्तु है नित्य नहीं रहने वाली है ऐसे वस्तुओं का संबंध। इसमें मर्म की बात यह है कि वस्तु असत्य है ऐसा मानने पर भी आसक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिनेमा की घटनाओं को हम अभी वर्तमान में सत्य नहीं देखते हैं, नकली है, छाया मात्र है, छाया चित्र है, ये तो केवल चित्र है, सच्चा नहीं है, परंतु उसमें भी आसक्ति इतनी हो जाती है छोकरों को अगर मना कर दिया तो आप घात तक छोरे कर जाते हैं, रातों जगते हैं, आंखें खराब हो जाती है, मन खराब होता है, संस्कार भीतर में इतने जम जाते हैं जो भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय में भी बाधा आती है, मन उधर लग जाता है। तो वे पदार्थ नहीं होते हुए भी इतना दुख देते हैं, ऐसे इस संसार का अभाव होने पर भी संसार को सत्य मान लेते हैं तो बड़ा भारी नुकसान होता है। मानसिक सुख भोगने में वो मान अबार वर्तमान में नहीं है, पुराना भोग भोगा हुआ है, उसके संस्कार है उससे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसमें भी एक सुख मिलता है, वो सुख है इतना बाधक है, प्रत्येक सुख भोग से ज्यादा बाधक है। वो इस बात सावधान होना चाहिए, संसार की सत्ता मिटाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आसक्ति के मिटाने की जरूरत है। और सत्ता आसक्ति मिट जाए बड़ी अच्छी बात, सत्ता आसक्ति आग्रह सहित संसार का चिंतन वो संकल्प है। सत्ता आसक्ति आग्रह सहित जो संसार का चिंतन है वो संकल्प है, और आसक्ति रहित संकल्प वो संकल्प नहीं वो पूर्णा है, वो पूर्णा सुगमता से मिटाई जा सकती है, परंतु मन चिपक जाता है आसक्ति होती है तो वहां से मिटना छूटना बड़ा मुश्किल होता है। गीता ने कहा है कि आसक्ति के कारण वो विषयों का चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है, विशेष विषयाध्यायत स्थित विशेष विशिष्ट परमात्मा की तरफ लगता है तो और भगवान का चिंतन कर जाए उसमें मन लग जाए तो मुक्ति हो जाती है। ध्याय तो विषयाध्यायत स्थित विशेष विशिष्ट माँ मनुस्मरण देते तुम मई वो प्रवृत्ति थे भगवान कहते हैं अगर विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है और मेरे का चिंतन करने से मेरे में लीन हो जाते हैं। विषयों में लीन नहीं हो सकते, संसार में कितना ही आपका प्यार हो रुपयों में पदार्थों में कुटुंब में, परंतु उनके साथ एक आप नहीं हो सकते, क्यों आप एक है नहीं, विनाश आप अविनाशी है। और परमात्मा का ध्यान कर तल्लीन हो जाए तो आपकी आसक्ति मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, आप उसी में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में एक हो जाते हैं। कारण के पहले से परमात्मा के साथ एक है आप, परमात्मा के अंश है आप, तो उसमें ध्यान करोगे तो एक हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा और संसार में आसक्ति बंधन हो जाएगा। गीता ने विशिष्ट बात कही कि विषयों का ध्यान करे मनुष्य तो आसक्ति हो जाते हैं, आसक्ति संग हो जाते, संग से कामना होती है, काम में बाधा अपना क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होकर नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। और राग द्वेष न हो, ध्याय तो विषयान है, विषयान ध्यान करने से, और राग द्वेष वियुक्त है विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करते हैं, पर भीतर आसक्ति नहीं है तो उससे पाप नहीं लगता, बंधन नहीं होता। इतनी बात नहीं है, एक विलक्षण लाभ होता है। राग द्वेष रहित और अंतर्गत अपना बस में है, ऐसे विषयों का सेवन करता है तो प्रसाद की प्राप्ति, प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता ऐसी होती है संपूर्ण दुखों का नाश करती है। प्रसन्नता तो अनुकूल भोग मिलने से भी होती है, मन वो अंतर्गण को मेला करती है। और भगवान ये ध्यान करते हुए राग द्वेष रहित विषयों का चिंतन करने से प्रसन्नता होती है, उस अवसर से बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो राग द्वेष आ सकती है, ये ही मनुष्य को बांधने वाले हैं, इनसे साधक को सावधान रहना चाहिए। अब एक बात बता रहे जो हमारे सुबह बात सुनने वालों ने विशेषता से कहा, ये बात तो आदि ख्याल में आई है, वो बात बताओ, उधर ध्यान कम जाता है। अब वो भीतर का विषय चिंतन मिटे कैसे है, उसका उपाय क्या है, वो उपाय बताया जाता है। दो बात होती है, विषयों का ध्यान करते हैं उसमें विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, परंतु सुख होता है वैसे ही उनका चिंतन करने में। तो सुख बांधने वाली चीज है, पतन करने वाली चीज है। वही चिंतन वही विषयों का उपभोग करें तो परमात्मा प्राप्ति होती है। तो उसमें दो बात है, एक विषयों का भोग करते तो विषय मौजूद है, और मन से विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय मौजूद नहीं है, उसका अभाव है। तो विषयों का अभाव होते हुए भी पतन कर देता है, और भाव संसार का मान के संसार का भोग भोगते हैं, रुपया इकट्ठा करते हैं, उनका तो महान पतन होता है, जिसमें कहना ही क्या है। जिन पदार्थों की सत्ता नहीं, अभी है नहीं वो पदार्थ, भोग है नहीं, पर मन से उसका राग पूर्वक चिंतन करते हैं तो पतन होता है। उसमें नहीं है, ये है सत्ता रहित होना, और चिंतन आसक्ति कर ये आसक्ति, तो ये दोनों ही बंधन कारण है, पर दोनों में आसक्ति ही बंधन कारण है, बंधन का कारण खास। आसक्ति न होने से वो बंधता नहीं है, विषयों का आचरण करता हुआ भी निर्लेप अगर रहता है सब में, तो सब में सब विषयों में भोगों में पदार्थों में रहता हुआ भी परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है। तो जो विषयों का चिंतन करते हैं वहां विषयों का अभाव है, परंतु मनुष्य की सावधानी रहनी चाहिए, वो सावधानी अब कहता हूं। अभाव है और चिपक करके रस लेते हैं भावना से, तो रस लेते हैं उसमें सत्ता नहीं होती हुई बांधती है, तो सत्ता नहीं होते हुए बांधती है, ऐसे संसारी सत्ता न होते हुए ये बांधती है, तो उसको दूर कैसे करें। कि विषयों का चिंतन हो, भोगों का चिंतन हो, रुपयों का चिंतन हो, तो उसमें इदम प्राप्त से मनोरथम इदम स्थिति भविष्य पुनर्धनम, ये धन मिल जाएगा, इतना हमारे पास है, इतना और हो जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, इतना मुनाफा हो जाएगा, इतना किराए का आ जाएगा, इतना बेटा भी आए तो उसमें इतना धन और आ जाएगा, ऐसे चिंतन करता है, माला पड़ता है, राम 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 माला करता है, गाय जप करता है, ऐसे चिंतन ऐसा होता है विषयों का। तो वो चिंतन होता है, वो विषय अभी नहीं है, तो वो अभाव है, परंतु मन की आसक्ति ऐसी होती है तो भाव करता है, तो भाव करके मन के विषय को सत्ता मानता है, मन दुष लेता है असत होते हुए भी। तो साधक के लिए उचित है कि उसकी सत्ता का अभाव करे, है नहीं विषय मन में तो ना, ना ना है ही नहीं, है ही नहीं विषय, कहाँ है, पुरानी बात याद आ गई, अभी तो नहीं है, तो अभाव का ज्यादा अनुभव करेगा, ठीक अभ्यास करके अभाव मिटा देगा, अभाव को तेज कर लेगा। मानो विषयों का अभाव है, एक विषयों के चिंतन से रस लेता है, तो अभाव वृत्ति को जोर से बढ़ाना चाहिए कि नहीं है। ऐसी सत्ता बढ़ाने से मनुष्य काम क्रोध से राग द्वेष से रहित हो जाता है। पांडव वनवास में थे, वन में रहते थे, उस समय भीमसेन का वर्णन आता है, कभी कभी दुशासन की दुष्टता याद आ जाती, द्रौपदी का तिरस्कार किया, अपमान किया, सही तीर खेचा, नग्न करना चाहता है, कटु शब्द कहता है, वे बातें याद आ जाती है। तो याद आने पर भीमसेन हाथ में दांत में पीसना है, ऐसे मन वो क्रिया हो जाती है। कभी विचित्र बात है ही नहीं, वहां दुशासन नहीं है, दुशासन नहीं है, परंतु उसको प्रत्यक्ष नहीं कर ले जाते भीतर से। तो पदार्थों की सत्ता न होने पर भी राग द्वेष पूर्व उनका चिंतन होने से महाराज उसमें तल्लीन हो जाता है, पाप पुण्य का भागी हो जाता है। तो दो बात, एक तो विषय नहीं है, एक चिंतन है। तो चिंतन तो आसक्ति पूर्व की ये बाधक है, चाहे विषय हो चाहे न हो। तो मनुष्य को चाहिए कि उसके अभाव है, अभाव है, अभाव, तो विषय चिंतन में भी अभाव समझे और संसार का भी अभाव हो रहा है। जो मैं प्राय सदा ही कहता हूँ, कभी भूल जाऊं तो बात अलग है, तो बहुत बार कहता हूँ कि ये संसार जितना तीख था ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। आप लोगों का मतलब ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रह गए, दो बात। और तीसरी बात है कि अब भी जा रहा है, अभी नष्ट हो रहा है, नाश होने का जो प्रवाह है वो वैसे ही जोरों से जा रहा है और हमारे संसार का शरीर का वियोग हो रहा है। जितनी जितनी अवस्था अपनी आ गई है, उतने दिन उतने वर्ष उतने महीने तो हमारे नष्ट हो ही गए, वो तो खर्च हो ही गए। अरे हो ही गए नहीं, हो रहे हैं। अभी वर्तमान हम काम कर रहे हैं, उस काम में तो कहीं भूल भी हो जाए, परंतु इसकी मौत आने में भूल नहीं होती है, वो तो खर्चा हो ही रहा है। प्रति क्षण अपने उम्र का खर्च हो करके और शरीर से वियोग निरंतर हो रहा है, अलग हो रहा है। जितने वर्ष होते हैं उतने वर्ष तो वियोग हो गया, अब बाकी जरा वही वियोग हो जाएगा, होते होते वियोग आते मर जाएगा। आज मर गया, आज नहीं मरा है, पेट में आया तब से मरना शुरू हो गया, जन्मा तभी मरना शुरू हो गया। मरना तो निरंतर रहते हैं, इस बात से भगवान ने मृत्यु संसार सागर का, मौत रूपी संसार सागर है। इस सागर में क्या है, जैसे सागर में जल भरा रहता है, ऐसे संसार में मौत ही मौत भरी, सिवाय मौत के संसार में कुछ नहीं है। मैंने ये बात कही कि धनवान हो उसके पास धनी विशेष है, ऐसे शास्त्र संसार नाशवान है, तो इसके नाश ही मुख्य और कुछ मुख्य नहीं है, केवल इनका अभाव हो रहा है। पहले अभाव, पीछे अभाव, वर्तमान में अभाव में अभाव होगा, और कभी इसका भाव होना होगा नहीं। नाशत को भी देते भाव, असत का भाव नहीं, सत्ता नहीं है, तो सत्ता है ही नहीं। होती मूल में सत्ता न होना, ये तो तत्व है, परंतु सत्ता न मानना ये साधन है। सत्ता न माने तो बहरा मर जाए, हजम नष्ट हो ही रहा है। ये बात बहुत मार्मिक है, बड़ी साधक के लाभ की बात है। पदार्थ में सत्ता ही ना है, इसको मिट रहा है। संसार तो प्रति क्षण मिट रहा है, मिटने में देरी नहीं होती। आप तो कभी सो जाते हो, बैठ जाते हो, भजन ध्यान करते हो, खेल तमाशा देखते हो, पर उम्र खर्च हो रही है, मौत नजीक आ रही है, इसमें भूल नहीं होती, कभी इसमें तातील नहीं होती, इसमें कभी छुट्टी नहीं होती। किसी समय में ये प्रवाह रुकता हो, ये तो बस धुन से बह रहा है। अब ऋषिकेश वहां रहते, गंगा जी हर 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 करके बह रही है, रात में छिप कर देखो तो बह रही है, चौड़े देखो तो बह रही है, स्नान करो तो बह रही है, पियो तो बैरे, वो बैरा धुन उसकी एक ही चल रही है, आप चाहे कुछ करे न करे। इसी तरह से आप इस शरीर में रहते हुए शरीर को अपने से अलग कर ही रहे, अलग होने का प्रवाह तेजी से चल ही रहा है, आप ध्यान नहीं देते। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा संसार से शरीर से प्रति क्षण वियोग हो रहा है, और साथ मानते हैं हम कि हमारा शरीर है, हमारे साथ है, सज्जनों साथ नहीं है, इसका वियोग हो रहा है। एक दिन वियोग साफ हो जाएगा, आज मर गए, आज नहीं, पेट में है तभी से मरना शुरू हो गया है, वो मरना आज ऊपर से दिख गया साफ। जैसे जल डालते हैं तो जल पात्र में जितना होता है धारा से जाते जाते पूरा हो जाता है, जब बंद हो गया, बंद तो हो ही रहा है, धारा में जा रहा है, जो जो बंद ही हो रहा है, तो सब बंद होने पर बंद दिखता है। ऐसे सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान का भजन चिंतन करो, निहाल लगाओगे, जैसे संसार के चिंतन से पतन होता है ऐसे भगवान के चिंतन से उद्धार होता है, कल्याण होता है, वो लाभ ले लो। मौत तो स्वतः आ रही है स्वाभाविक, पर अमरता तो आप चाहो तो करो, नहीं तो नहीं होगी अमरता। आप कर लो, संसार से जितना वो संबंध विच्छेद आप करोगे उतना आपका कल्याण हो जाएगा, जितना उतना ही संबंध भगवान से हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, भगवान का संबंध तो अखंड है, आप विमुख होकर के संसार को अपना मान के नजीक मानते हैं, ये बाधा है। वो बाधा क्या है, वो तो बेचारा सही जा रहा है, परंतु आप नए नए संबंध जोड़ रहे हैं, परिस्थिति सुखदायी दुखदायी कोई भी स्थिर नहीं रहती, आप सुख दुखी होकर मुफ्त में मौत को खरीद रहे हैं, मुफ्त में पापों को खरीद रहे हैं, मुफ्त में नरकों को खरीद रहे हैं, महान दुखों को मुफ्त में दे रहे हैं। संसार तो रहता नहीं कि तो जा रहा है, ना धन रहता है, ना निर्धनता रहती, ना रोगी पना रहता, ना निरोगी पना रहता है, ये रहे ही है नहीं अपना। दूसरी बात है, आप जो मानते हैं मेरा शरीर है, बिल्कुल गलत है। आप स्वयं शरीर हो ऐसी बात नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और मैं मेरे लिए नहीं है शरीर। शरीर संसार का है, संसार के लिए ही है। इस बात से संसार की सेवा में लगा दो तो आप निहाल हो जाओगे, निर्लोप हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और मेरा मन ममता करके करोगे तो ममता मल है, मल ये तो महान मेलापन है, तो संसार की ममता मेलापन है। और भगवान के साथ संबंध है उज्ज्वल बना देगी, कल्याण कर देगी चीजों को ममता, तो संसार ममता नहीं रखना चाहिए। निर्मम हो निरहंकार शांति बनेगा सती, अहंकार का है उसमें ममता में क्या फर्क है कि शरीर के साथ एक होकर शरीर को अपना मान लेना स्वरूप ये अहंता है, और शरीर को मेरा मानना ये ममता है। तो निर्मम हो निरहंकार शांति बनी गज सती, ना शरीर मेरा है ना मैं शरीर का हूँ, ना शरीर मेरा है। मेरा अगर शरीर है तो आप एक बात का ध्यान रहे, आप शरीर को मर्जी है जैसा बना सकते हैं, मर्जी है जितना दिन रख सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, तो आपका कैसे मेरा कैसे होगा। मेरा तो तभी हो इसको रखूं न रखूं, ठीक करूं बेठीक करूं, जितना चाहे रख लू जी जाऊं मरूं नहीं, तो ये हाथ की बात नहीं है। तो शरीर के परिवर्तन मिटाने में आप हाथ नहीं, जीता रखने में आपका बस नहीं चलता, इसको बदलने में आपका बस नहीं चलता, बीमार हो गया तो निरोग बना दो आप बस नहीं चलता, शाम और काला शरीर है तो उसको उज्जवल कर दो गोरा, इसमें आपका बस नहीं चलता, रोग हो जाए उस रोग से रहित शरीर को कर दो बस नहीं चलता, फिर भी कहते मेरा है शरीर आपका है, बताओ ये मेरा नहीं है। इसकी एकता आपके साथ नहीं, आप चेतन हो परमात्मा के अंश हो, शरीर पंचभौतिक है, फिर जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पांचों का बनाया हुआ शरीर है पांच भाषों का, ये पंचायती धर्मशाला है, थोड़ा दिन रहने वाली है, एक गांव में पंचायती का मकान था। एक गरीब आदमी ने कहा कि मेरे छोरी की शादी करनी है, पंचायत का मकान मिल जाए। तो पंकज मिल दिया, पंकज पंचों ने कह दिया अभी ऐसी बात है, करो तुम अपनी कन्या की शादी करो, कन्या का निर्माण कर लो, विवाह कर दो अपनी पुत्री का। घर में मकान वैसा था नहीं तो वहीं रहने लगा। कहते अब विवाह हो गया? हाँ 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 हा, हम जानते हैं विवाह हो गया। तो अब निकलोगे? अभी नहीं, अभी नहीं। वो करते करते दिन लगा दिए और वो वहीं रहने लगा। और विचार किया कि रहना अच्छा है, यहाँ यहाँ आराम है, बड़ा झल्ला आराम है, यहाँ गर्मी सर्दी में रक्षा करने का आराम है, यहाँ सोने बैठना चट्टी पेशाब सब तरह आराम है, यहीं रहे। रहने लग गया तो अंत में न मानने से पंचों ने नालिश कर दी और उनको निकाल दिया और बाहर सब मकान जो उनके बिछोने बने सब बाहर फेंक दिए। तो फिर निकलना ही पड़े। इसी तरह सज्जनों, ये शरीर एक धर्मशाला है, थोड़ा दिन के लिए मिली है और आप छोड़ दो, पहले विजय हो जाओ, महाराज जन की तरह भगवान में तलीन हो जाओ, फिर कोई हर्ज नहीं। रज धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब क्या धोखा है। ऐसे मनो से ये रहने का लाभ आप पूरा ले लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, भगवान में प्रेम आपका अनन्य हो जाए, फिर कोई ब्रदर सही रहे चाहे जावे। इसे काम ले लिया आपने। अरे भोजन करने के बाद पत्तल को कुछ ला सकता है या? अब फेंको और क्या कहा, अरे भोजन हो गया, अपने काम में ले लिया। ऐसे सही का काम लेने पर आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, चिंता नहीं रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेगा, हर्ष रोग नहीं रहेगा, चित्त में जितने विकार है आज संपत्ति वो एक नहीं रहेगा। ऐसा शरीर को अपना माने शरीर को तो सब विकार आएंगे, सब कोई विकार बाकी नहीं रहेगा। विकार ही नहीं महाराज, दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार चोरी डकैती अपहरण ठगी ये भी आप करने लग जाओगे। संसार को सच्चा मान करके उसमें सुख लोगे तो बड़े बड़े पाप आपके द्वारा हो जाएंगे, बड़े नुकसान होगा और अंत में वो पाप पाप पर रहेगा। जैसे व्यापार करता है कोई सज्जन, कपड़ा खरीदता है, माल गोदाम भर देता है, फिर वो बिक्री करते करते सब खाली कर देता है, तो कपड़ा तो आया और गया, अब नफा और नुकसान उसे रहता है। ऐसे सही तो आता है चला जाता है, आप अनाचार करते हैं तो नुकसान आपका रहता है, और भजन कर लेते हैं भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं नफा आपके लिए जाता है, सही तो नहीं रहेगा। माल तो लिया बिक्री गया, माल तो गया, अब आपको क्या रहा, नफा तो नुकसान। ऐसे इनसे भोग भोगते हो, राजी होते हो, संग्रह करते हो, अपना अपना करते हो तो नुकसान कर रहे हो, घाटा लग रहा है आपके। कमजा करण कॉल कर आयो, मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो। तो मनुष्य ही मिल जाए तो मैं अपना कल्याण कर लू। अरे मूल जो जा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े शुभ कर्मों से मनुष्य मिला, वो मूल तो खो दिया, वो तो मिला तो भोग लिया, अब वो बगैर जितने रुपये खा ले उतना तो खत्म हो गए। ऐसे वो पुण्य था मानव शरीर मिलने का, वो मानव शरीर का पुण्य तो नष्ट हो जाएगा। और ब्याज खोए सिर्फ ब्याज, मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ायो, पाप अन्याय कर दिए, अगर फिर ब्याज बढ़ गया फिर दुख होगा। तो सज्जनो लभ्यास दुर्लभ विधम बहु संभवान से बड़ा दुर्लभ मानुष है, दुर्लभो मानुषो देह, दुर्लभ होता भगवान की कृपा से सुलभ है तो दुर्लभ है। दुर्लभ त्रय में मनुष्य तुम अंश तुम महापुरुष, मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण ये परवाह नहीं है, बैठे हैं इसे नहीं सोच रहे हो आग लग गई है, आग जैसे जिस घर में रहे हुआ हम बैठे हैं, चारों तरफ बाढ़ आ गई है, जमीन धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे गिर रही है, अब रंगी को बजा रही है, गिरने वाली अभी जमीन खसक जाएगी, कहाँ टिकोगे, डूब जाओगे। ऐसे ही उम्र खत्म हो रही है और डूब जाओगे। सत्याग्रह अपना काम बना लो, राम 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 कर भगवान के नाम का जप, सत्संग स्वाध्याय, भगवान में तल्लीन हो जाओ, उनको याद करो, फिर सही की परवाह नहीं, हम तो भगवान में हो गए। अब शरीर जावे चाहे रह जाए, हट जाए, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उनके शरीर की परवाह नहीं होती। शरीर से काम ले लिया रहे तो अच्छी बात है, और कोई काम में रहे तो ये चले जाएगा। तो ये चले जाते हुए अपने भी काम में लो, औरों का ही उद्धार करो, औरों का कल्याण करो। जैसे मोटर मिलती है किसी को किराए की, उसको कह दिया भाई 3 महीना मोटर तुम्हारे को दी, 3 महीना हमारा मोटर रही, अब मोटर को सजाता है, कपड़े ऊपर उठाता है, ठीक रखता है, दिन बीतते है, अरे कर क्या रहा है कि मोटर हमारी है, कितना दिन है कि 3 महीना 3 महीना रहेगी, अरे तो बात नहीं रहेगी। तो इसे काम ले लो, अपना जितना काम हो जाए वो करो, फिर अपने प्रेमी सज्जनों को भाई कहीं जाना करना हो तो मोटर हमारी घड़ी है, किराया तो हमारा लग गया, तेल हमारा लग गया, सब लग गया है, अब काम ले लो तो और भी लोग ले रहे, अच्छी बात है। ऐसे शरीर मिला है, बाल अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, 3 महीनों के लिए 3 महीने रही रहती, किसी कम होती ज्यादा से ज्यादा 3 अवस्था रहता है। तो उसे अपना कल्याण करो और अपने द्वारा दुनिया का भी कल्याण करो, कि भाई कोई काम ले लो, ये तो सही रहने वाला है नहीं, प्रतीक्षण जा रहा है, एकदम खत्म हो जाएगा। शरीर जब तक है तब तक दुनिया का हित करो, सेवा कर दो भाई, है पास में वस्तु है, शरीर है, जिसके द्वारा किसी दूसरों को उद्धार हो जाए तब तो है सार्थक, नहीं तो भाई निरर्थक आयु खत्म कर दी। अपना कल्याण नहीं किया, औरों का भी कल्याण नहीं किया, तो शरीर किस वास्ते धारण किया? मनुष्य की महिमा इसी वास्ते है कि भगवान का भजन करे और दुनिया की सेवा करे, जिससे समय सार्थक हो जाए। सेवा वाला काम बहुत ही बढ़िया उत्तम है, वो सेवा बाहरी होती है, एक आभ्यंतर सेवा, परम सेवा होती है, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने को हो जाए औरों को भी परमात्म प्राप्ति का मार्ग बता दें, औरों को भी सिखा दें, तो माने न माने अपनी जो बारी निकाल ही दें तो हमारे को तो पूरा काम हो जाएगा। मैं एक हांडी का दृष्टांत देता हूँ। एक गांव में कुम्हार रहता था, बर्तन बनाने वाला, तो घट पर घर पर गया, जाओगे रोटी लाओगे, रोटी काहे के लाओगे, दाना नहीं है घर में, धान तो है ही नहीं, किसकी रोटी बनाऊं? तो वो गया एक हांडी लेकर के, फिर हांडी ले ले कुछ बाजरा दे दे। तो पहले सिक्का कम था और सभी आपस में वस्तु विनिमय से काम चलता था, तो जिसके अनाज वो अनाज दे दिया, साग उसे साग दे दिया, हांडी हांडी दे दी, तेल नहीं तो तेल दे दिया, बाजरे से तेल भी खरीद लिए, साग भी खरीद लिया, हांडी भी खरीद ली, कपड़ा भी खरीद लिया, एक खेती कर ले अनाज हुआ जिससे सब चीजें आ जाती, तो सब चीजें सबको मिल जाती। बारी करता उसके घर में साग पैदा होता है तो साग देकर अनाज ले दो, साग देकर तेल ले दो, साग देकर घी ले दो, साग देकर के बसाल ले लो, साग दे लो, कपड़ा ले लो, चाहे जो चीज साग ले लो, अनाज पैदा तो अनाज के साथ सब चीजें मिल जाए, जो जहाँ मिलती उसे सब आपस में मिल जाती थी। तो कहा भैया हमारे बाजरा चाहिए, लो हांडी ले लो, हांडी दे दी और बाद वो बाजरा लेकर घर पर गया, घर पर गया अस्थी को जा दिया, उसने रसोई बना दी, भोजन कर लिया। दूसरे तीसरे दिन वो मिला, अरे यार ये क्या किया क्या किया, अरे हांडी फूटी हुई थी, हांडी चढ़ी नहीं, आग बोला आग बुझ गई, हांडी चढ़ी नहीं, तो कुम्हार बोला कि मेरी हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ना रसोई बढ़ने वो कहते हैं, हांडी चढ़ी, घर में हांडी नहीं चढ़ती, तो क्या चढ़ते, घर में खाने को चीज नहीं है, तो कुमार बोला कि हमारी हड्डी चढ़ गई, ऐसे हम लोग आपको बातें बता देते हैं तो हमारी हड्डी चढ़ गई, अब फूटो ये आप संभालो, आप ठीक है, फूटी हुई है। आप भी कृपा कर काम में ले आओ तो अब हमारी हंड चढ़ गई, आपकी हंड चढ़ गई, नहीं तो हमारी तो हमके लिए कह दिया, बात बता दी, खैर सरल हृदय से कपट नहीं रखा, कोई बना कर नहीं कहा, है जो सरलता से बातें बता दी तो हमारी तो हंड चढ़ गई भाई। तो आप भी अपनी चढ़ाओ, आप अपनी फूटी हुई रखो, वो फूटी हुई तो फूटी थी हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे हाथ में है, आप उसको ठीक करो तो आप ही अपना उद्धार कर लो। और उद्धार नहीं है, इतनी इतनी बात होती है, मना श्रोता होते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहला नंबर श्रोता का है, वो ज्ञान का खजाना है, श्रोता में ज्ञान अधिक होता है। एक कथा हो रही थी तो दत्ता तेरी कथा कही, उसमें तेईस का तो बोला महाराज तेईस गुरु का है, एक चौथा नहीं आया, कहा भाई बहुत ठीक कहा तुमने, तो सुनने वाले ऐसे चतुर होते जो महाराज सुनाने वालों की भूल निकाल लेते, ठीक कर ले, जिसमें अपने सत्संगों में तो ऐसी तेजी है महाराज, हम गीता जी की बात कहो तो ये बोले नहीं तो सभ्यता से नहीं बोलते, गलती कर रहे तो कह देंगे बाबा जी जानते नहीं, गीता कहते ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसलिए से हमारा लोह चुगा होता है, लोह चुगा होता है चुंबक, तो वहां लोग चाबी खो गई, कभी खो गई जैसे में क्या करें, तो उस चुंबक को घुमाते हैं सच चिपक जाते हैं, ये नहीं साहब, तो इसलिए से महाराज लोह चुगा है सत्संग सुनने वाले, ये तक पकड़ गए थे, या गलती करी या गलती करी या गलती करी, तो यहाँ पर आदमी को सावधान रहना चाहिए, वक्ता हो उसको भी सावधान रहना, ये लो चुका है बहुत से सुख नहीं आपकी, तो अपनी सावधानी से काम करो और सावधानी से बात कहो, और केवल हित के लिए कहो तो हमारी हानि चली गई, हमारे काम तो बन गया और आपका भी बन जाएगा अगर इसी तरह से करो तो, नहीं तो भाई समय बीत जाएगा और नुकसान हो जाएगा, इस बात हरेक भाई बहन से कहना है कि अपने सावधानी के साथ करो, उम्र है जा रही है तेजी से, बहुत सी उम्र बीत गई है, बीती जिसका तो पता है 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 80 वर्ष आ गए तो वो इतना पता पता है हमारा अलग समय बीत गया है, इतना नष्ट हो गया, अगर ही कितना इसका पता नहीं, यहाँ से गए बाहर वही खत्म हो गए, तो ये समय जा रहा है तेजी से, मौत आ रही है, तुरंत मत इतना पते मृत्यु बाबा, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक जल्दी जल्दी विषय और विषय सेवन करोगे तो विषय घर ये खाद्य मौत को खाना है, राजी होना है, लड़ाई करना है, दीन लेना है, बच्चे पैदा करना है, ये तो हरेक जुड़ में हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति का अवसर तो भाई इसमें ही है, जो देवताओं में नहीं है वो यहाँ है, वो काम करना है जो और शरीरों में नहीं होता हो वो किया तो सही है, ये सत्य वस्ती नौ से दिया वेदी महती विनष्टी, यहाँ अगर काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े भारी हानि होगी, तो ये अवसर यहाँ ही है, सेवा करने का, भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त करने का, उसके चिंतन कर लेना, उस भगवान सचिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसका कथन उसी का चिंतन, एक एक उसी को एक परत हो जाए, एक परायण हो जाए तो निहाल हो जाएगा, नहीं तो सर सही तो सह जाएगा, और बात में कुछ लगेगा नहीं, नफा हो जाएगा नुकसान हो जाएगा, बस नफा हो जाएगा, और इसे बंद रहे तो पुराने पुण्य से जो शरीर मिला है वो पुण्य तो खत्म हो रहे हैं, सब पुण्य खत्म, उम्र खत्म होने पर उसी वक्त मरना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा पुरुष कृष्ण सृष्टि विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।